हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 14। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्कीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमिदं तत्रादरः न परः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपांगनानां चदुकूलचोरं श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि। करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व मृतुमेतदेव, गोविंद दामो धरमाधवेति, मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं, यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणं।
ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आठवां स्कंद तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति, श्लोक संख्या 14। कृपया मेरे साथ साथ इस अत्यंत ही पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। गजेंद्र कहते हैं,
सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टि सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टि सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टि सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टि सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः।
शब्दार्थ, सर्वेन्द्रिय, सर्वे इंद्रिय मतलब संसार में जीव जब इस दुनिया में आता है तो उसको शरीर भगवान देता है, उसको इंद्रियां भगवान प्रदान करता है। जैसे भी हमारे कर्म होते हैं, जैसे पिछले श्लोक में मूल प्रकृतये नाम मतलब प्रकृति जो है वो आदि पुरुष भगवान है और भगवान प्रकृति को आकार देते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में 24 तत्व हैं, पंचभूत से बना हुआ ये शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि से। तो इन वस्तुओं को मिक्स करके या शरीर बनाया भगवान ने, ये भगवान की कारीगरी है। भगवान ने कितने सुव्यवस्थित स्टाइल में हमारे ये शरीर बनाया है। दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, आंखों के नीचे नासिका है और नासिका के नीचे मुख है, वाणी है। ये कितना भगवान ने एकदम सही तरीके से हर एक अंग को एकदम परफेक्ट जगह पे रखा है। जैसे जब भोजन की थाली हमारे नेत्रों के सामने आती है तो सबसे पहले तो नेत्र उसे देखते हैं, है ना। देखते ही फिर जैसे ही निवाला बना के हम मुंह में डालने वाले होते हैं तो नासिका में उसकी सुगंध आती है। देखने से पता चलता है कि वो कहीं गंदा तो नहीं है, पात्र गंदा तो नहीं है, या फिर वो वस्तु जली हुई नहीं है, सड़ी हुई नहीं है, या कुछ इस तरह उसके अंदर कोई गंदगी तो नहीं। फिर मुंह के पास लाने से पहले, मुंह में डालने से पहले ही नासिका को सुगंध आ जाती है कि वो कहीं पुराना तो नहीं है, रखा हुआ बासी तो नहीं है, और उसके बाद मुख में जाता है। अब भगवान ने ये इंद्रियां इतने सही तरीके से अपनी परफेक्ट जगह पे रखी है। अब सोचे कि अगर हमारी आंखें एक साइड पर होती, एक शोल्डर पे होती, और हमारी नासिका दूसरे शोल्डर पे होती, मुख पीछे होता तो क्या करते? एक पहले इधर से प्लेट लेकर आते और बोलते आंखों को, देखो देखो
कैसा भगवान कैसा प्रसाद बना है, सही है या नहीं है। और दूसरी तरफ नाक को लेकर जाके देखते कि नाक पहले सूंग तो सही है, सही है, उसके बाद पीछे जाके उसको डालना कितना हार्ड लगता। लेकिन भगवान कितने सही तरीके से हमारी समस्त इंद्रियों को परफेक्ट जगह पे रखते। सर्वेंद्रिय गुणदृष्टि, गुणदृष्टि मतलब जो इंद्रियों के विषय हैं वो भी भगवान प्रदान करते। सबसे पहले तो जीव को इंद्रियां प्रदान करते हैं और जीव अपनी इंद्रियों से जो कुछ भी भोगता है वो सारे पदार्थ भगवान ही प्रदान करते हैं, है ना। हम तो जब जन्म लेते हैं तो केवल अपने साथ अपनी इंद्रियों को लेकर आते हैं, है ना, विषय हम नहीं लेकर आते। इस संसार में जब हम आते हैं तो नेत्रों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, नासिका से क्या सूंघना है और मुख से क्या खाना है, वो सब वस्तुएं भगवान ने पहले से ही प्रदान करके रखी हैं, है ना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जीव पैदा हुआ हो और उसने सोचा हो अरे मैं आंखें तो लेकर आया परंतु इन आंखों से देखूंगा क्या, देखने के लिए भी तो कुछ लेके आओ ना, ऐसा नहीं। वो सब वस्तुएं सर्वेंद्रिय गुणदृष्टि मतलब वो सारी की सारी संसार में विभिन्न वस्तुएं जो कि हम अपनी इंद्रियों से भोगते हैं, विषय अर्थात रूप रस स्वाद गंध रस इत्यादि स्पर्श इत्यादि जो कुछ भी हम अपनी इंद्रियों से आनंद भोग रहे हैं वो सब भगवान ही का दिया हुआ है। और इसके साथ साथ भगवान ही जीव को स्मृति देते हैं कि तुम्हें क्या करना है। भगवान कहते हैं 15.15 में सर्वस्य चाहम हनम च। जीव जो इच्छा करता है उसके अनुसार उसे जन्म मिलता है, उसे इंद्रियां मिलती हैं। और उस इच्छा भी किसी ने अगर कोई इच्छा की है, समझो यहाँ पर संसार में कोई इच्छा करता है मुझे बहुत ज्यादा मांस आहार करना है तो भगवान उसे वैसा शरीर दे देते हैं और उस शरीर में वो मति भी देते हैं कि तुम्हें अब ऐसा करना है क्योंकि तुमने ऐसा चाहा था, आज तुम्हें वो वाला शरीर मिला है, अब तुम ऐसा ही करो, वो भोग भोगो। और क्योंकि जीव दिल से चाहता है कि मैं भगवान को भूल जाऊं, मैं भगवान को याद ना करूं, इसलिए भगवान उसे विस्मृति दे देते हैं। ठीक है तुम मुझे भूलना चाहते हो, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूं। भगवान कितने सुहृद हैं जीव के, जीव जो चाहता है जो जो डिजायर करता है भगवान उसकी हर इच्छा को पूरी करने में उसकी सहायता करते हैं, साथ साथ में गाइडेंस देते हैं, परंतु वो सारी वस्तुएं प्रदान करते हैं। वास्तव में अत्यंत ही सुंदर शिक्षा दे रहे हैं गजेंद्र। सर्वेंद्रिय गुणदृष्टि अर्थात जीव के पास अपना कुछ भी नहीं है। इस संसार में कोई भी ऐसा बड़े से बड़ा साइंटिस्ट नहीं है जो जीव को इंद्रियां प्रदान कर सके। ओरिजिनल इंद्रियां जैसे हमारे हाथ पैर आंखें इत्यादि हैं, वो ओरिजिनल जैसे भगवान ने दी है कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं दे सकता, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट नहीं दे सकता, है ना। वो क्या कर सकते, ज्यादा से ज्यादा नकली लगा सकते हैं, स्टील की राड डाल के टांग को चलना सिखा सकते हैं, आंखें पत्थर की लगा सकते हैं या लेंसेस कुछ इस तरह, लेकिन ओरिजिनल जैसे भगवान ने हमारे इवन दांत बनाए। कितने दफा पहले छोटे होते हैं दांत भी टूट जाते हैं फिर दूसरे आते हैं, लेकिन जब उनमें से एक दांत सड़ जाता है उसको डॉक्टर दूसरा लगाता है तो वो कभी ऐसा ओरिजिनल नहीं होता, है ना। तो भगवान ने सबसे पहले तो इतनी कृपा की, जीव को इतनी सुंदर सुव्यवस्थित इंद्रियां प्रदान की। कोई डॉक्टर एक किसी का हाथ कट जाए कि एक फिंगर भी कट जाए ना तो वो एज इट इज नहीं कर सकता, नकली लगा के देगा लेकिन ओरिजिनल नहीं होगा। तो इंद्रियां प्रदान की और उसके बाद सर्वेंद्रिय गुणदृष्टि भोगने के लिए वस्तुएं प्रदान की, जितनी भी संसार में विषय हैं वो सब भगवान ने प्रदान किए। और उसके साथ साथ भगवान ने जीव को शक्ति प्रदान की, यादगिरी प्रदान की कि तुम्हें इन इंद्रियों से किस प्रकार से भोग भोगना है। आगे सर्व प्रत्यय हेतवे यानी कि
ये सब चीजें जो हैं, वो देखकर, उनको समझकर जीव भगवान को समझ सकता है। असत भगवान का वर्णन कैसे किया जाएगा, जो असत्ता छाय योक्ताय सदा भासयते नमः। असत्ताय छाया, ये जो असत्य छाया है, सर्व प्रत्यय हेतवे, इसका मतलब ये होता है कि भले ही संसार में जो कुछ भी है हमें दिख रहा है, वो साक्षात भगवान नहीं है, लेकिन जो भगवान का अस्तित्व है वो इस भौतिक जगत को देखकर हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, इसे छोटी सी मिसाल है, जैसे कहीं एक दीवार पे सूरज दिख रहा हो, मतलब किसी ने वास्तव में आसमान में सूर्य का दर्शन नहीं किया हो, दीवार पे सूरज दिख रहा है, तो वो ये सोच सकता है कि ये सूरज दीवार पर है, परंतु वो अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाएगा तो उसे लगेगा कि ये सूरज का रिफ्लेक्शन, क्योंकि सूरज का रिफ्लेक्शन पहले पानी में पड़ा था, ठीक है, तो वो सोचेगा ये पानी से दीवार पर आ रहा है, वास्तव में सूरज कहां पर है, पानी में। लेकिन और भी ज्यादा बुद्धि लगाएगा तो क्या सोचेगा, नहीं, पानी में भी ये रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्लेक्शन वास्तव में उस सूर्य का है जो आसमान में है। तो इस भौतिक जगत में इतना सब कुछ है और इतना सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से हो रहा है, तो फिर इसको देखकर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये सोच सकता है कि ये सब भगवान की कारीगरी है, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सारी वस्तुएं जीव कुछ अपने साथ नहीं लाता, लेकिन फिर भी अपना अधिकार मानता है कि मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूँ, क्या किससे कर रहे हो, तुम सांस भी अपनी वायु, सांस लेने के लिए अपनी वायु भी प्रकट नहीं कर सकते, वो सांस लेने के लिए वायु के मोहताज हो तुम भगवान के। जब पैदा हुए थे तो कोई एक आध टोकरी मिट्टी की लेकर आए थे कि मैं पृथ्वी अपने लेकर जाऊं, खड़ा कहां पे होऊंगा, खड़े रहने के लिए पृथ्वी, भगवान कहते हैं, भगवान ने बहुत ही सुंदर तरीके से श्रीमद् भगवद गीता में 7.1 में बताया कि देखो मैं तुम्हें वो बताऊंगा, असंशयम समग्रम यथा गास्यसि तच्छ्रु, मैं तुम्हें इस तरह बताऊंगा जिसको समझकर तुम मुझे बगैर किसी संशय के समझ सकते हो ना, किस प्रकार से तुम बगैर किसी शक के मुझे समझ सकते हो, वो तरीका बताने से पहले भगवान ने कहा कि देखो मनुष्यों में, बहुत सारे मनुष्यों में, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चित माम वेति तत्तत, हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, मुझे जानने वाला तो विरला ही कोई होता है। फिर भगवान ने अपने को बताने से पहले क्या बताया श्लोक नंबर 4 में, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टदा, सबसे पहले भगवान ने अपनी अष्टदा प्रकृति, ये भौतिक जगत के विषय में बताया कि ये सब मेरी है, ये सब मैंने पैदा किए हैं, अब ये सब वस्तुओं को पैदा करने वाला मैं हूँ, यानी कि भगवान ने अपनी सत्ता के विषय में बताने से पहले अपनी शक्ति भौतिक प्रकृति के विषय में बताया। यानी कि अगर तुम इस तरह से समझोगे कि भौतिक प्रकृति मेरी है, ये भौतिक प्रकृति कितनी पावरफुल है, भगवान बताते हैं आगे, मम माया दूरत्यया, और फिर आगे बताते हैं कि अब इस माया, क्योंकि मेरी है, इसको पार करना बहुत कठिन है, परंतु करना क्या है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, मेरी शरण में आ जाओ तो तुम माया से बिल्कुल पार हो जाओगे। और इस प्रकार भगवान ने पहले बताया भौतिक प्रकृति के विषय में, फिर आध्यात्मिक प्रकृति के विषय में, अपरेयम इतस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में परा, कि भौतिक प्रकृति तो मेरी है, लेकिन ये भी जान लो कि जो आध्यात्मिक प्रकृति है, जिसकी जो कि इस समस्त भौतिक प्रकृति का विदोहन कर रही है ना, जो इसको भोग रही है, अब भगवान कितने हितैषी है जीवों के लिए, भगवान कोई भी जीव जो है थोड़ी सी भी बुद्धि लगाकर सोचे तो उसे समझ में आ जाएगा कि भगवान कितने कृपालु हैं, कितने हितैषी हैं। भगवान ने पूरी प्रकृति बना दी,
प्रकृति के अंदर जीव के लिए सारे इंद्रिय भोग रख दिए, सारी विषय वस्तु इंद्रियों के विषय प्रदान कर दिए, सांस लेने की हवा दे दी, खाने के लिए वृक्ष इत्यादि में फल अनाज इत्यादि सब कुछ दे दिया। हर एक वस्तु जो जीव की इच्छा है उसके अनुसार जीव को प्रकृति के अंदर हर एक वस्तु प्रदान करके और दे दी, जाओ भोगो भिखारियों, जितना खाना है खाओ इस पृथ्वी से। और फिर जीव इतना नालायक है कि भगवान ने कहा है कि देखो मैंने दिया ना सब कुछ तुमको, तुम फिर भी अगर खुद अपने अधिकार से खाओगे ना इसको, अपने अधिकार से भोगोगे तो कर्म बंधन में फंस जाओगे। इसलिए क्या करो, यत करोषि यदश्नासि यत्होति तदासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष वमद अर्पण। जो कुछ खाते हो, जो कुछ पीते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, जो कुछ दान करते हो, वो सब मुझे अर्पण करो। इस प्रकार से क्या होगा, शुभाशुभ फलै रेव मोक्ष से कर्म बंधन है, तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। मैंने तुम्हें दिया है, तुमको खाली इतना करना है पहले मुझे अर्पण करो। अगर नहीं किया तो क्या होगा, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, तुम कर्मों के बंधन में फंस जाओगे और बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में बारंबार आते रहोगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस कर दुखी होते रहोगे। इसलिए तुम्हें कर्मों के बंधन से छूटना है, परंतु जीव इतना बुद्धिहीन है कि वो भगवान को सरेंडर नहीं किया, भगवान को अर्पित नहीं। और भगवान कहते हैं भुंजते थे तो अगम पापा में ये पचनते आत्म कारण, अगर तुम केवल अपनी इंद्रिय तृष्टि के लिए ही भोग करोगे तो तुम पाप का भागी बनोगे। और जब जीव स्वयं अपनी इच्छा से अपराध कर लेता है और पुनः उसे उस अपराध का दंड मिलता है तो भगवान पर दोष आरोपित करता है कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि कर्म भी उसका और कर्म का परिणाम भी उसका। भगवान तो कितने कृपालु हैं कि हम अपने अपराधों के कारण किसी भी योनि में चले जाएं, परंतु भगवान कभी भी हमसे मुंह नहीं मोड़ते। वो स्वयं कहते ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, वो मेरे अंश हैं, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों न हो, समस्त जीव मेरे अंश हैं। और अहम बीज प्रदप पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। भगवान ऐसा कहने में कभी नहीं कतराते, ये नहीं सोचते कि यदि मैंने ये कह दिया कि मैं ही सबका बीज देने वाला पिता हूँ तो सब खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि क्यों, क्या आप हमारे पिता हो तो हमारा पालन करो। वो सबका पालन कर ही रहे हैं। हर वो वस्तु जो हमें हमारी जीने के लिए आवश्यक है वो सभी तो भगवान प्रदान करते हैं। क्या कोई अपनी ओर से हवा पैदा करता है, पानी पैदा करता है, खाना अनाज, ये सब भगवान ही तो प्रदान करते हैं। 84 लाख योनियों में जीवों को जिस जिस वस्तु की आवश्यकता है वो सब भगवान ही प्रदान करते हैं, भगवान ही सबका पालन करते हैं। और यदि कोई बुद्धिमान है तो वो समझ सकता है कि भगवान जीव के सबसे बड़े हितैषी हैं, भगवान ही सबकी सुहृद हैं। भगवान इतने बुद्धिमान हैं कि वो उनके समस्त जीवों को बुद्धि भी देते हैं और पुनः उनको किस किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना है वो सब भगवान उन्हें गाइड करते हैं। भगवान कहते हैं मत्ता स्मृतिर ज्ञानम, भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान के अंदर अनंत गुण हैं। कोई भी थोड़ी सी बुद्धि भी यदि रखे तो ये सब जान सकता है, परंतु जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो बुद्धिहीन है, वो देखकर भी नहीं समझ सकते, है ना। जो साक्षात भगवान, जब द्वापर युग में साक्षात भगवान सामने थे, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भगवान को नहीं समझ सकते थे। तो फिर भला भगवान की प्रकृति को देखकर कोई भगवान को समझ जाएगा, ये जरूरी नहीं। उसके लिए भगवान कहते हैं पहले मेरी शरण में आओ, प्रेम से मेरे नाम का भजन करो, उसके बाद में तुम्हें स्पिरिचुअल बुद्धि दूंगा। ये भौतिक बुद्धि, तुम इस बुद्धि के द्वारा भौतिक मेटेरियल नेचर को ही नहीं समझ सकते तो मुझ अतीत आत्मिक भगवान को कैसे समझ सकते हो। भगवान इस भौतिक बुद्धि के द्वारा समझे नहीं जा सकते, इसीलिए भगवान कहते ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते, फिर मैं तुम्हें बुद्धि प्रदान करूंगा। कब, जब तुम मेरे नाम का भजन करोगे, जब तुम मेरी कथाओं का श्रवण करोगे।
और उसके बाद क्या करूंगा, तुम्हारे हृदय के अंदर जो अंधकार है उसको ज्ञान रूपी प्रकाशमान दीपक से उस अंधकार को खत्म कर दूंगा, तभी तुम मुझे समझ सकते हो। अगर ऐसा नहीं किया तो करोड़ों जन्मों तक अपनी बुद्धि लगाते रहो, कभी नहीं समझ सकते कि कृष्ण भगवान, कोई साधारण जीव कैसे कृष्ण को सोच सकता है, वो यही कहेगा ये भगवान कैसे हो सकता है, है ना? भगवान तो पूर्ण है, भगवान को किसी वस्तु की कमी है क्या जो चोरी करता फिरता है हर जगह पर? भगवान तो पूर्ण है तो उसको क्या इतना काम ही हो सकता है भगवान कि इतनी सारी पटरानियों के साथ शादी करें? और भगवान लीला भी, एक तो बुद्धि जीव की इतनी कम है और भगवान लीला भी ऐसे करते। जब भगवान विवाह करने के लिए जाते थे तो कहीं से किसी रुक्मिणी को हरण करके आ जाते थे, तो कहीं से दूसरी बहुत सारी रानियों की शादी, कभी किसी के साथ विवाह करते थे, कभी किसी के साथ 16,108 विवाह। तो यो जो बुद्धिहीन होंगे, जो भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे, वो तो यही कह सकते हैं कैसा भगवान हो सकता है, है ना? कभी लड़कियों के कपड़े चोरी करता है, तो कभी रासलीला करता है, तो कभी ऐसे करता है, कभी वैसे करता है। भगवान होकर ऐसे काम करना क्या शोभा देते हैं? तुम कितने मूर्ख हो जो भगवान कृष्ण को भगवान कहते हो। तो उसकी बुद्धि तो भगवान को समझ नहीं सकती, लेकिन भगवान जो भी करते हैं केवल अपने भक्तों को प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। भगवान गृहस्थ की लीला करते हैं और सिखाना चाहते हैं कि गृहस्थी को किस प्रकार से होना चाहिए। भगवान आजकल गृहस्थी, आजकल के कैसे गृहस्थी होते हैं, पति उधर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, पत्नी उधर टीवी वीडियो देख रही होती है और बच्चे उधर गेम खेल रहे होते हैं, ये गृहस्थी। इतना कुछ भी आज तो, एक तो पहले से ही जीव की बुद्धि इतनी कम है और उसका लाइफ स्टाइल इतना बिगड़ा हुआ है कि वो और भी ज्यादा, मतलब भगवान की ओर उसका मन लगे कैसे लगेगा, है ना? आज जीव का, आज किसी मनुष्य के घर में दिन स्टार्ट होता है, सबसे पहले उसके घर में क्या आता है, न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर वो पढ़ेगा जरूर, चाहे कोई भी व्यक्ति होगा न्यूज़पेपर पढ़ेगा, भगवद गीता और भागवतम को कभी नहीं उठाते, है ना? कभी देखते भी नहीं है कि इसके अंदर क्या है। तो फिर भगवान जबकि हमें भगवान होकर भी अपनी लीला में दिखाते, भगवान सुबह सवेरे उठते हैं, ध्यान करते हैं और नित्य उनके दरबार में क्या होता था कि लीलाएं होती थी, जो बड़े बड़े राज ऋषि थे उनकी लीलाओं को किया जाता था, बहुत बड़े कारीगर होते थे, बुद्धिमान जो ऐसे करते थे, एक्टर्स वो करके भगवान को मनोरंजन कराते थे, ऐसी ऐसी लीलाएं दिखाते थे, प्रहलाद चरित्र। या फिर कभी कभी क्या होता था कि भगवान को भगवान की लीलाएं करके दिखाते थे कि भगवान छोटे होते थे, वो किस प्रकार से गोपियों के घर से माखन चोरी कर, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब तक जीव के जीवन में भगवान का सानिध्य ना हो, सद्पुरुषों की चरित्रों का वर्णन ना हो कि किस प्रकार से वो सब स्थिति में डील करते थे, ये सब विषय में जब तक जीव नहीं समझता तब तक वो सही डिसीजन नहीं ले सकता। आज जीव क्या करता है, वही कंडम वीडियो स्टोरीज को देखता है और उससे उसकी बुद्धि और भी ज्यादा गिर जाती है, और भी उनके विचार गिर जाते हैं, जिसके कारण वो कभी भी उन्नति नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम भगवान की लीलाओं को श्रवण करें, महापुरुषों की, जो संत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी जीवन चरित्र को पढ़ें, ताकि हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें, सही निर्णय ले सकें, सही गति में आगे बढ़ सकें। तो गजेंद्र भगवान को कह रहे हैं सर्वेन्द्रिय गुणादृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे, क्योंकि आप ही के कारण हमें सब कुछ प्राप्त होता है, इंद्रियां, इंद्रिय विषय और इंद्रिय विषयों को भोगने की शक्ति आपके द्वारा ही प्राप्त होती है, और असताच्छाय योक्ताय सदा भासयते नमः, सदा भासायते नम, कि क्योंकि ये भौतिक जगत आपके अस्तित्व की एक रिफ्लेक्शन है, इसलिए इसको देखकर सत्य का भ्रम प्रकट होता है। असता, असता मतलब सत्य का ब्रह्म के प्रकट होने से छाया समानता के कारण, क्योंकि वो एकदम भगवान की
अंतरंग शक्ति की बिल्कुल रिफ्लेक्शन है तो फिर ये भौतिक जगत भी सत्य प्रतीत होता है। हालांकि सत्य नहीं है परंतु फिर भी उसमें सत्य का भ्रम होने लगता है क्योंकि एकदम एज इट इज छाया है और आप इतने महान हो कि सब कार्य कर रहे हो, प्रकृति को बनाते हो, जीव को बनाते हो, इंद्रियों को बनाते हो, इंद्रिय विषय को बनाते हो और इंद्रिय विषयों को भोगने की शक्ति प्रदान करते हो और आपको इस बुरी प्रकृति को देखकर आपको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, आपकी शरण में आया जा सकता है। इसीलिए मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। सदा भासाय ते नमः, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए, अपने संरक्षण में लीजिए, इस भौतिक बंधन से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। अनुवाद, हे भगवान, आप समस्त इंद्रिय विषयों की दृष्टा हैं, आपकी कृपा के बिना संदेहों की समस्या के हल होने की कोई संभावना नहीं है। यह भौतिक जगत आपके अनुरूप छाया के समान है। निसंदेह मनुष्य इस भौतिक जगत को सत्य मानता है क्योंकि इससे आपके अस्तित्व की झलक मिलती है। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस श्लोक का भावानुवाद इस प्रकार होगा, इंद्रिय कर्मों के विषय वास्तव में आपके द्वारा देखे जाते हैं, आपके निर्देशन के बिना जीव एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 15.15 में पुष्टि हुई। अब जीव को इंद्रियां तो दे दी, विषय भी दे दिए, लेकिन क्यों जीव को ये मनुष्य, ये कौन सा जीवन, कोई भी योनि मिली है, क्यों मिली है? क्योंकि उसने पिछले जन्म में उसको भोग करने की इच्छा की थी। अब भगवान ही उसको शक्ति प्रदान करेंगे, जाओ तुमने ये मांगा था, जाओ भोगो। तो इसलिए भगवान ने बताया 15.15 में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। आप हर एक हृदय में स्थित हैं और आपसे स्मृति तथा विस्मृति आती है। चायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, माया के वशीभूत जीव इस भौतिक जगत का आनंद लूटना चाहता है, किंतु जब तक आप आदेश नहीं देते तथा उन्हें स्मरण नहीं दिलाते तब तक वह अपने जीवन के छायाव्रत यानी आभासी उद्देश्य का अनुसरण करने में प्रगति नहीं कर सकते। भगवान याद दिलाएंगे तभी तो जीव कार्य करेगा, बुद्धि देंगे तभी तो जीव आनंद, जो आनंद वो समझता है कि मुझे लूटना है, उस आनंद को लूटने के लिए भी बुद्धि और शक्ति तो भगवान ही देंगे ना। तो बद्ध जीव जन्म जन्मांतर गलत लक्ष्य की ओर प्रगति करता जाता है और उसे इस लक्ष्य का स्मरण आप द्वारा ही दिलाया जाता है। एक जन्म में बद्ध जीव किसी एक लक्ष्य की ओर प्रगति करना चाहता है किंतु शरीर बदलने पर वह हर बात भूल जाता है। फिर भी हे प्रभु, चूंकि वह इस जगत का कुछ न कुछ भोग करना चाहता था, अतएव आप उसे उसके अगले जन्म में उसका स्मरण दिलाते हैं। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, चूंकि बद्ध जीव आपको भूलना चाहता है, अतएव आप कृपा पूर्वक जन्म जन्मांतर तक उसे अवसर प्रदान करते रहते हैं जिससे वह आपको सतत बुला सकता है। अतएव आप बद्ध जीव के नित्य निर्देशक हैं, क्योंकि आप हर एक वस्तु के मूल कारण हैं, अतएव हर वस्तु सत्य प्रतीत होती है, चरम सत्य तो आप ही हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कितना सुंदर गजेंद्र बता रहे हैं कि क्योंकि हर एक वस्तु आपसे निकली है, जो कुछ भी है वो आपसे ही, असता छाया युक्ताय सदा भासाय ते नमः, कि वो भले ही वो भौतिक जगत रिफ्लेक्शन है लेकिन क्योंकि आपसे निकला है तो सब कुछ सत्य प्रतीत होता है, भ्रम होता है, लेकिन चरम सत्य तो आप ही है, इसलिए सदा वासायते नमः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सर्व प्रत्यय हे तवे शब्द की व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की है। वे कहते हैं कि फल अर्थात कार्य से कारण की झलक मिलती है, यानी कि कोई भी आप कार्य देखते हो तो आप देखते हो कि उसका कारण क्या होगा। जिस प्रकार से हम भौतिक जगत देखते हैं तो उसका कारण ढूंढते हैं ना, ये भौतिक जगत इतना सुव्यवस्थित तरीके से कैसे चलता है। तो यहाँ बता रहे हैं उदाहरण आठ, मट्टी का पात्र कुम्हार के कार्य का फल है, अतएव पात्र को देखकर कुम्हार के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। कोई भी मट्टी का पात्र देखकर ये सोच सकता है कि अवश्य किसी कुम्हार ने इसे बनाया होगा। उसी प्रकार ये भौतिक जगत को देखकर कोई भी ये अनुमान लगा सकता है कि अवश्य कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, कोई पुरुष ऐसा है जो हम सबका सुहृद है। सुहृद न होता तो हम सबकी भोगने योग्य वस्तुएं क्यों रखता। माता पिता बच्चे के सुहृद होते हैं, हितैषी होते हैं, तभी तो माता स्कूल से आते हैं बच्चे उससे पहले ही उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करके रखती है। अगर उनकी हितैषी ना होती तो क्या सोचती, आए तो भले भूखे मर जाए, नहीं बना के रखती हूँ। नहीं, उन्हें पता है मेरे बच्चे अभी आएंगे, उन्हें इस वस्तु की आवश्यकता होगी, पहले से तैयार करके रखती है। है ना, हम जूस बना के रखते हैं कि भाई बच्चा थका थका आएगा। तो ये उसी प्रकार से भगवान ने इस भौतिक जगत में हमारे लिए हर एक वस्तु पहले से बना के रखी है, पहले से रखिए कि मेरा बच्चा आएगा तो उसे किस किस वस्तु की क्या। भगवान जीव की सेवा करते हैं, माँ के गर्भ में आते ही गर्भ में हर एक वस्तु भगवान जीव को माता के द्वारा ही प्रदान करते हैं। जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है भगवान को पता है कि इसे दूध की आवश्यकता होगी। क्या कोई फैक्ट्री में उसकी माता ने दूध बनाया था अपने स्तनों में? भगवान पुनः स्वयं उसके लिए दूध प्रदान करते हैं, माता के स्तन में दूध डाल देते हैं। उसके बाद भगवान को पता है कि अभी बच्चा बड़ा हो गया है, उसे प्रसाद खाने मतलब खाद्य पदार्थ खाने की आवश्यकता होगी, अनाज खाने, तो उसके लिए दांत दे देते हैं। भगवान दांत बनाते हैं उसके और उसके अनुसार उसको अन्न इत्यादि खा सकता है। जैसे जैसे जीव बड़ा होता है उसकी हर एक आवश्यकता के अनुसार उसको विषय वस्तु प्रदान करते हैं भगवान। तो भगवान कितने कृपालु हैं। इसलिए यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण सॉरी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, वे कहते हैं कि जिस प्रकार मट्टी का पात्र कुम्हार के कार्य का फल होता है, अतः पात्र को देखकर उसके कुम्हार के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। उसी प्रकार यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से मिलता जुलता है और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है कि यह किस प्रकार कार्य कर रहा है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नाने व कौंते जगत भी परिवर्तित है। हे कुंती पुत्र, यह जगत मेरी अध्यक्षता में कार्य करता है। भौतिक जगत की गतिविधियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पीछे भगवान की अध्यक्षता कार्य कर रही है। शीला प्रभुपाद की तो शीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये सोच सकता है, ये अंदाजा लगा सकता है कि भौतिक जगत जो इतना सुव्यवस्थित तरीके से बना हुआ है वो केवल और केवल भगवान ही उसको इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और भगवान स्वयं भगवद गीता में बताते हैं कि ये सारी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। और गजेंद्र कहते हैं कि क्योंकि सब कुछ आपकी अध्यक्षता में हो रहा है, आपकी करुणा से हो रहा है, तो इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे संरक्षण प्रदान कीजिए, अपनी शरण में ले लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार शुरू से पढ़ेंगे, कृपया साथ दीजिएगा। श्री बादरायणी रुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं चाप्यम्।
प्राचन्मन्यनुशिक्षितम्। श्री गजेन्द्र उवाच, ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परीशायापि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदम् येनेदं यैदं स्वयम् योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयम्भुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमिति शुकृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासी गहनं गभीरं यस्तस्य पारे भिविराजति विभु। नायस्य देवा ऋषय पदं विधु जन्तु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्य कृतिभिर्वचिष्टतो दुरत्ययानो क्रमण समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनय सुसाधव चरन्त्यलोक व्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृद समीगते। न विद्यते यस्य च जन्मकर्म न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोका ययसंभवाय स्वमायया तान् यनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परीशाय ब्रह्मणेनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आचार्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च क्षित्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असतायाच्च योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमाम्ना यमहार्णवाय नमोपवर्गाय पारायणाय।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।